नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। नाम है अध्यात्म साधना का मर्म। अक्सर हम सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब ढेर सारे कर्मकांड, पूजा पाठ है ना।
हाँ, ये आम धारणा है।
पर क्या बस इतना ही है? पूज्य गुरुदेव एक सवाल उठाते हैं, बड़ा दिलचस्प, कि क्या सिर्फ एक अच्छी कलम मिल जाने से कोई महान लेखक बन जाता है, या छेनी हथौड़ा हाथ में आ गया तो बढ़िया मूर्तिकार बन गए? तो आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, और ये सवाल ना सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। पूज्य गुरुदेव का शायद सबसे बड़ा संदेश यही है कि साधन, चाहे वो कलम हो, पूजा की थाली हो, ये अपने आप में काफी नहीं है।
मतलब
ये कि लिखने के लिए कलम तो चाहिए, पर उसके साथ ज्ञान, कला, वो भाव होना चाहिए। मूर्ति बनानी है तो औजार लगेंगे, पर हुनर भी तो चाहिए ना।
हाँ, सही बात है।
ठीक वैसे ही अध्यात्म में मंत्र हैं, विधियां हैं, ये सब साधन हैं, पर ये खुद लक्ष्य नहीं है। इनके साथ साधक की अपनी योग्यता, उसकी भावना, उसकी चेतना, उसका जुड़ना बहुत जरूरी है।
ये बात तो सोचने वाली है। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई उदाहरण दिए हैं इसे समझाने के लिए। जैसे साइकिल, सिर्फ साइकिल होने से क्या होगा, पैरों में ताकत भी तो चाहिए चलाने के लिए।
बिल्कुल।
या छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी तो चाहिए, पर पैरों में दम भी तो हो।
हाँ।
चित्र बनाना है तो ब्रश के साथ साथ चित्रकारी आनी भी चाहिए। तो मतलब साधना के लिए कुछ नहीं कर सकते, योग्यता जरूरी है, चाहे दुनियादारी हो या अध्यात्म।
एकदम सही। और यहीं से अध्यात्म के दो खास पहलू सामने आते हैं, क्रियायोग और भावयोग।
क्रियायोग और भावयोग, थोड़ा समझाएंगे इसे?
हाँ, देखिए, क्रियायोग है वो सब जो हम बाहर से करते हैं, पूजा, जप, हवन, आरती, ये सब क्रियाएं हैं।
अच्छा।
और भावयोग है हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारी चेतना का स्तर क्या है। पूज्य गुरुदेव बहुत साफ कहते हैं कि क्रियायोग का असली मकसद है भावयोग को जगाना, उसे सुधारना।
मतलब बाहरी क्रियाएं अंदर के भाव जगाने के लिए हैं।
बिल्कुल। अगर हम सिर्फ क्रियाओं में ही अटके रह गए और उनके पीछे का भाव, उनका उद्देश्य नहीं समझा, तो साधना अधूरी रह जाती है। इसीलिए तो कई बार लोग कहते हैं कि सालों से पूजा कर रहे हैं पर कुछ महसूस नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आया।
हाँ, ये सुनने में आता है।
क्योंकि माध्यम तो इस्तेमाल किया पर वो माध्यम अपने आप में काफी नहीं था।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं या दीपक जलाते हैं, ये सब भौतिक क्रियाएं हैं, इनका आत्मा पर सीधा असर नहीं होता? क्या ये सिर्फ बाहर तक ही सीमित है?
देखिए, एक तरह से हाँ, क्योंकि ये क्रियाएं जड़ चीजों से जुड़ी हैं, जल, दीपक, फूल, अक्षत, इनका असर मुख्य रूप से भौतिक या स्थूल जगत पर होता है। आत्मा तो चेतन है, उसका जुड़ाव, उसका पोषण वो चेतना से ही होगा, जड़ चीजों से कैसे होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन विचारों के स्तर पर होता है, भाव के स्तर पर, चेतना का चेतना से। इसीलिए पूज्य गुरुदेव चेतावनी भी देते हैं कि भगवान को किसी हाड़ मांस के शरीर में या इन चमड़े की आंखों से देखने की इच्छा रखना, ये अध्यात्म नहीं है, ये तो एक तरह का भौतिकवादी है।
तो फिर अगर बाहरी क्रियाएं और ये भौतिक दर्शन मुख्य नहीं है, तो अध्यात्म का असली मर्म, असली सार क्या है?
असली मर्म है साधनों का सही इस्तेमाल। हम जल, अक्षत, धूप, दीप, माला सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ एक रस्म निभाना नहीं होना चाहिए।
तो क्या होना चाहिए?
असली उद्देश्य है इनके जरिए अपने अंदर की भावनाओं को साफ करना, अपनी चेतना को शुद्ध करना। कर्मकांड सफल तभी है जब वो हमारे अंदर की सोई हुई अच्छी भावनाओं को जगाएं, हमारी सोच को सुधारें, हमें अंदर से बेहतर इंसान बनाए, भाव जगें तो बात बने।
और पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि इस अंदरूनी सुधार की शुरुआत खुद से होती है, आत्म संशोधन से। उन्होंने पूजा के वो पंच कृत्यों का भी जिक्र किया है, पवित्रीकरण, आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास। क्या ये भी सिर्फ बाहरी क्रियाएं हैं?
हैं तो बाहरी क्रियाएं, पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार इनका बहुत गहरा सांकेतिक अर्थ है। ये पांचों कृत्य असल में हमारी इंद्रियों और मन को साधने, उन्हें शुद्ध करने का प्रतीक है और अभ्यास भी।
जैसे?
कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे जिह्वा का शोधन जो आचमन से जुड़ा है, उसका मतलब सिर्फ पानी से कुल्ला करना भर नहीं है।
अच्छा।
उसका असली मतलब है आहार की शुद्धि, यानी हम जो कमा रहे हैं वो ईमानदारी का हो, हम अभक्ष्य चीजें न खाएं, और साथ ही वाणी की शुद्धि, मतलब कड़वा न बोलें, किसी की बुराई न करें, किसी का दिल दुखाने वाले शब्द न कहें, बल्कि सच बोलें, मीठा बोलें, हितकारी बोलें।
और आंखों का शोधन न्यास से जुड़ा हुआ, हाँ उसका अर्थ है दिव्य दृष्टि विकसित करना। हर स्त्री में माँ, बहन या बेटी का रूप देखना, वासना की या भोग की दृष्टि न रखना, यही अंदरूनी सफाई है जो धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा के बीच की दीवार को हटाती है।
ये आत्मशुद्धि की प्रक्रिया आसान तो नहीं लगती।
बिल्कुल नहीं।
पूज्य गुरुदेव ने भी इस पर जोर दिया है कि उन्नति और अच्छाई के लिए कीमत चुकानी पड़ती है।
हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी कीमती पाने के लिए मेहनत और संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अध्यात्म कोई सस्ता सौदा नहीं है भाई। जैसे हीरा खरीदना हो तो अच्छी कीमत देनी पड़ती है ना, वैसे ही आत्मिक शांति चाहिए, उन्नति चाहिए, तो अपने दोषों से, अपनी कमजोरियों से लड़ना पड़ेगा। हाँ, पूज्य गुरुदेव इसे साधना समर कहते हैं, साधना का युद्ध। हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है, अपने प्रति कठोर होना सीखना होगा। सिर्फ बाहर पूजा पाठ कर लिया या भगवान से माफी मांग ली, इससे काम नहीं चलेगा। कर्म का फल तो मिलता है।
तो रास्ता क्या है काले? तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार सच्ची अध्यात्म साधना सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, ये क्रिया योग यानी कर्म और भाव योग यानी शुद्ध अंदरूनी भावना, इन दोनों का मेल है।
बिल्कुल, संतुलन।
और इस संतुलन का आधार है लगातार खुद को सुधारते रहना, आत्म संशोधन। साधन जरूरी है पर असली मंजिल अंदर की सफाई और चेतना का विकास है।
एकदम सही कहा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। पूज्य गुरुदेव हमें अपनी कमजोरियों के प्रति कठोर होने को कहते हैं, तो क्यों ना हम बाहरी क्रियाओं से एक कदम आगे बढ़ें और आज अपने रोज के जीवन में अपनी किसी एक अंदरूनी कमी को, किसी एक बुरी आदत को पहचाने और उसे जड़ से खत्म करने का पक्का इरादा करें। शायद यही आत्ममंथन, यही संकल्प सच्ची साधना की तरफ पहला कदम हो सकता है।